ओम शांति। तो आज क्या है, दशहरा। सब रावण को जलता हुआ देखने के लिए गए शायद। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, ये जो नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, और कल थी अष्टमी, कल यहाँ पे गरबा डांस भी था, तो इन सब का आध्यात्मिक अर्थ क्या है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये अष्टमी जो कहते हैं, इसका अर्थ है आठ शक्तियां। जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमें ये आठ शक्तियों की प्राप्ति होती है। जैसे जब हम किसी का कोर्स करवाते हैं तो उनसे कहते हैं ना कि राजयोगा मेडिटेशन आप जब करते हो तो ये आठ शक्तियां आपको प्राप्त होती है। तो ये नवरात्रि के दिनों में भी इन शक्तियों की पूजा होती है। तो सबसे पहले जो शक्ति की हम बात करते हैं वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ। उसमें हम क्या एग्जांपल बताते हैं, कछुए का, है ना। अगर कछुआ कहीं से जा रहा होता है और अगर कोई डेंजर है या कोई भय है तो क्या करता है कछुआ, अपने को अंदर सिकोड़ लेता है। कहते हैं कि अगर हाथी का बड़ा पैर भी अगर कछुए पर पड़ जाए तो कछुए को कुछ नहीं होता, इतना उसका जो कवर है वो इतना सख्त होता है, इतना मजबूत होता है वो। तो इसी तरह से हम आत्माओं के लिए भी बाबा ने क्या कहा इस शक्ति के बारे में, कि दुनिया में बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी, जहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं, जहाँ हम लौकिक में रह रहे हैं या हमारे अलौकिक संबंधों में, लेकिन हमारी मन बुद्धि उसमें फंसे नहीं। जहां पर भी भय है, जहां पर भी ऐसी कोई चीज है, जहां पे टकरावों की बात है, तो अपने आप को विड्रॉ कर लेना, अपने आप को उस कवच के अंदर लेके जाना। जैसे ये मजबूत शेल है ना, उसका कवर है। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि सामने वाली बात मैं कितने अंदर लू या नहीं, है ना। वो एक दीवार की जैसी है, कौन सी बात मेरे अंदर आएगी नहीं आएगी ये मुझ पे डिपेंड करता है। और अंदर से कछुआ कैसा होता है, सॉफ्ट नरम होता है। तो सेंसिटिविटी की, अंदर से वो सेंसिटिविटी परखने की शक्ति अंदर से, कि हाँ कोई डेंजर है, हाँ कोई टकराव की बात है अभी जिसपे मुझे अलर्ट होना है। तो ये हुई कछुए की बात। तो इस शक्ति को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आती है साक्षी भाव की बात, डिटैचमेंट की बात। लोग डिटैचमेंट वर्ड से थोड़ा डरते हैं कि डिटैचमेंट मतलब वैराग्य, लेकिन वैराग्य किससे, डिटैचमेंट किससे, अपने ही इमोशन से। हम बहुत इमोशंस में डूब जाते हैं, लेकिन साक्षी होकर हर चीज को देखना। किसी और की प्रॉब्लम होती है तो हम बराबर उसको सुझाव देते, बहुत अच्छे से उसको सोल्यूशन बताते, लेकिन अपनी परिस्थिति में हम नहीं बता पाते। तो अपनी ही परिस्थितियों को साक्षी होकर देखना, उस कवच में चले जाना और साक्षी होकर देखना और फिर उसके आगे निर्णय करना। तो जब ये शक्ति की बात आती है तो कौन सी देवी याद आती है, कहते हैं कि पार्वती देवी। पार्वती का अर्थ है जो आत्मा परिवर्तन करने के लिए तैयार है वो है पार्वती। अभी दिखाते हैं ना कि शंकर जी तपस्या के लिए चले जाते, तो पार्वती यहीं रहकर तपस्या करती है, इसी संसार में रहकर वो तपस्या करती है, अपने में जो गुण धारण करने वो करती है, अच्छाइयों को धारण करती है और तपस्या करती है। तो हम भी वो पार्वती है जो इस संसार में रहते हुए, चाहे ये कलयुगी संस्कार है, संसार है, लेकिन बाबा ने हमसे क्या कहा कि यहाँ रहकर ही तुमको संपूर्ण बनना है। उस दिन बाबा की मुरली में एक वाक्य था कि गृहस्थ व्यवहार में रह के तुमको कमल फूल समान बनना है, किसी से नफरत नहीं करनी है। बाबा ने कहा नफरत कब आती है हमको किसी से, देह अभिमान में होते तब नफरत आती है, और जब कोई हमको रोकता है कुछ करने से तो वो अच्छे नहीं लगते, जब कोई हम पे बंधन डालता है तो वो हमको अच्छे नहीं लगते, उनसे हमको नफरत आती है। कोई गलत करता है तो हमको नफरत आती है, हमको लगता है ये श्रीमत पर नहीं चलते, उनसे हमको नफरत आती है। तो हम कुछ भी ऐसा देख लेते हैं तो उस व्यक्ति से हम घृणा करना चालू करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा किसी से भी नफरत नहीं करनी है, है ना। पता नहीं बाबा उस व्यक्ति को, उस आत्मा को किस नजर से देखता हो। एक कहानी है, एक बार एक पुजारी रास्ते से जा रहा था, उसकी टकराव एक व्यक्ति से होती है, तो पुजारी उसको जोर से चिल्लाता है, कहता है कि तू देख नहीं सकता मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, तूने मुझे ठोकर मार दी। तो वो कहता है कि क्या समझता है तू अपने आप को, तेरे भगवान को तू जाके पूजा करता है, वही भगवान को आके मैं रोज चप्पल मारूंगा, देखते है कि तेरा भगवान मेरे को क्या देता है। तो पुजारी जो भक्त है ये रोज जाता है मंदिर में और पूजा करता है, आरती करता है, फूल चढ़ाता है, और वो जो व्यक्ति होता है वो रोज आके मंदिर पे चप्पल मारता है रोज, ये बहुत दिनों तक चलता है, ये पूजा करता है वो चप्पल मारता है। अब एक दिन ऐसा होता है कि बहुत तूफान होता है, बहुत बारिश हो रही होती है, रास्ते बंद हो रहे होते हैं, तूफान आ रहा होता है। तो पुजारी सोचता है कि रोज तो मैं जाता हूँ ना मंदिर में भगवान को पूजा करने, फूल चढ़ाने, आरती करने, आज एक दिन नहीं जाऊंगा तो ठीक है, कैसे जाऊं मैं। तो वो जो व्यक्ति होता है वो सोचता है, ये तो सोच रहा होगा कैसे जाऊं, लेकिन आज तो मुझे जाना ही है, मैं तो जाऊंगा ही, चाहे कितना भी तूफान आए, कितना भी बारिश हो, मुझे तो जाना ही है। तो वो जाता है और चप्पल मारता है, तो भगवान प्रकट होते और भगवान बहुत खुश होते और भगवान उसको स्वर्ग दे देते। तो पुजारी को गुस्सा आता है, पुजारी कहता है मैं तुमको रोज प्रे करता हूँ ना, और ये तो चप्पल मारता है, फिर भी आपने इसको ऐसा किया। तो भगवान कहते हैं कि उसको मेरी याद कितनी निरंतर है, देखो कि इतने तूफान में भी वो आके मुझे चप्पल मार रहा है ना, मतलब उसके दिमाग पर मैं ही हूँ। तो हम जब किसी से नफरत करते हैं तो हमको नहीं पता कि वो आत्मा का अंदर से क्या पुरुषार्थ चल रहा है ना, बाबा उसको किस नजर से देख रहा है हम नहीं जानते, इसीलिए किसी से भी नफरत नहीं करनी है। उसी तरह से पार्वती जी को जब देखते हैं तो उनके साथ गाय दिखाते हैं ना, तो गाय बहुत सेक्रेड होती है, हिंदू धर्म में उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो गाय के बारे में रिसर्चेस बताती है कि ये एक ऐसी जानवर है जिसमें बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाय में, और गाय बहुत सारी चीजें देती भी है। क्या क्या देती है? दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, सब गाय देती है, देखो कितना देती है ना। उस दिन बाबा की मुरली में स्लोगन था कि तुमको इच्छा मात्र अविद्या बन, दूसरों की इच्छा पूर्ण करने वाली कामधेनु बनना है। तो हम कौन है? कामधेनु। तो हमको भी दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करना है। तो सामने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से हमारे सामने आएगा तो हमको उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना है। जैसे 12th की मुरली बाबा की जो चली फर्स्ट सीजन की भी, उसमें भी बाबा ने कहा ना महादानी वरदानी, तो हम वो देवी है, हम वो पार्वती है, हम वो कामधेनु है जिसको सारी इच्छाएं पूर्ण करनी है। तो ये हुई पहली शक्ति। दूसरी शक्ति सहन शक्ति है ना। तो सहन शक्ति के बारे में बाबा ने बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है? सहन शक्ति, जो सहन करेगा वो शहंशाह बनेगा। और बाबा ने कहा है कि सहन शक्ति, तुमको सहन क्यों करना है? क्योंकि बाप की आज्ञा है, इसलिए तुमको सहन करना है। बाबा ने कहा है कि ये सहन शक्ति में बहुत मार्क्स ले सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, है ना। तो इसमें वो बुक में चित्र कौन सा दिखाते हैं? आम के पेड़ का, है ना, वो लड़का पत्थर मार रहा है। तो देखा जाए तो पत्थर हमेशा आम के फल को ही मारा जाता है, कभी हम पत्तों पर पत्थर मारते नहीं मारते। पत्थर किसको पड़ते? आम को, मीठे आम को पड़ते, है ना, पत्तों को नहीं पड़ते। तो उसी तरह से हम भी बाबा की वो मीठे मीठे आम है जिनको पत्थर पड़ेंगे इस दुनिया में, है ना, हमको नहीं पड़ेंगे तो किसको पड़ेंगे? हम ही वो महान आत्माएं हैं जिनको पत्थर पड़ेंगे, लेकिन हमको फिर भी दूसरों को मिठास देनी है। जब आम का फल पत्थर पड़ के गिर जाता है तो वो अपना टेस्ट नहीं चेंज कर देता, वो मीठा ही रहता है ना, और खाने वाला बहुत खुशी से उसको खाता है। तो हमारे साथ भी सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमको हमेशा देने की भावना ही रखनी है, वही मीठे आम की तरह वही मिठास हमसे निकलनी चाहिए। इसी तरह से बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत सहन करती हूँ, क्या ज्ञान में ही पढ़ू, सामने वाला नहीं पढ़ रहा ज्ञान, सहन शक्ति क्या मुझ में ही होनी चाहिए, है ना। और बोलते मैं बहुत सहन कर रही हूँ। जब हम ये कहते हैं ना कि मैं बहुत सहन कर रही हूँ, मतलब हम बहुत दर्द में, मतलब वो हमारी शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। जैसे कि अगर कोई चीज नीचे गिरी है और मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत टाइट है, और मेरे को किसी ने बोला ये उठाओ, तो मैं उसको उठाऊंगी, फिर बोलेंगे वापस गिरी हुई है उठाओ, दूसरी बार मैं उठाऊंगी, गिरी हुई है तीसरी बार मैं उठाऊंगी, चौथी बार मैं उठाऊंगी, फिर तो मैं बोलूंगी ना कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है। तो सहन शक्ति के लिए क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, मोल्डिंग नेचर जो बाबा कहता है, एडजस्टिंग नेचर चाहिए। ऐसे ही सहन शक्ति नहीं आएंगी ना। अगर सहन करना है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे में समझ होनी चाहिए कि हम क्यों सहन कर रहे हैं, मतलब एहसास नहीं होना चाहिए कि सहन कर रहे हैं, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखेंगे, कितनी परिस्थिति आई बाबा के जीवन में, लेकिन बाबा ने कैसे खड़े रह के सब कुछ सामना किया, बाबा के चेहरे पे कोई दर्द कोई दुख नहीं था। तो उसी तरह से सहन शक्ति, तो इसमें दुर्गा माँ, दुर्गा को देखेंगे तो उसकी सवारी किस पर दिखाते, शेर पर। तो इतनी सारी परिस्थितियों पर जिसने विजय प्राप्त की सहन करते हुए, वो है दुर्गा माँ, है ना। और जब दुर्गा का चित्र देखते हैं, कोई भी देवी का चित्र देखते हैं, तो कैसी सजी सजाई हुई होती है, और उसके आठ हाथ होते हैं भुजाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिर का ताज, है ना। ये ताज क्या है, ज्ञान से भरपूर जो आत्मा है संगम युग पर, वो दुर्गा है। जिसको कोई अहम नहीं, जिसको कोई अहंकार नहीं है कि मुझ में ज्ञान है, वो दुर्गा है। एक बार क्या हो रहा था, सुकरात जो होता है ना, वो जा रहा होता है नदी के किनारे, और एक बच्चा खड़े होके, उसके हाथ में एक प्याला होता है, और वो बहुत जोर जोर से रो रहा होता है बच्चा। तो सुकरात उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो बच्चा कहता है कि मैं कितनी देर से सागर को कह रहा हूँ कि इस प्याले में समा जा, लेकिन ये सागर समाता ही नहीं प्याले में, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो सुकरात उस बच्चे को देखकर इतना रोने लगता है, क्योंकि सुकरात बहुत ज्ञानी माना जाता है ना। तो बच्चा कहता है आप क्यों रो रहे हो। तो सुकरात कहता है तुमने मुझे कितनी बड़ी बात सिखा दी, मुझे लगता था कि परमात्मा पूरा ज्ञान मेरी बुद्धि में है, लेकिन ये बुद्धि वो प्याले की तरह ही है, वो तो ज्ञान का सागर है, लेकिन मेरी बुद्धि में सब ज्ञान तो अभी तक नहीं है, तो मुझ में किस बात का अहंकार है। तो वो बच्चा जब ये बात सुनता है तो क्या करता है, वो प्याले को सागर में फेंक देता है। तो बोलता है आपने ये क्या किया, प्याले को सागर में क्यों फेंक दिया। तो बच्चा कहता है कि अगर सागर इस प्याले में नहीं समा सकता तो हम ही इस सागर में समा जाए। तो सुकरात और फूट फूट के रोने लगता है। उसी तरह से ज्ञान का कोई अहंकार नहीं है ना, कि हम ही बाबा में डूब जाए, उस ज्ञान सागर में डूब जाए। तो दुर्गा माँ के ऊपर जो ताज है वो ज्ञान का ताज है ना, भरपूर है जिसकी बुद्धि ज्ञान से। फिर उस देवी का चेहरा देखो कैसा रहता है, हसमुख रहता है, बहुत संतुष्ट रहता है। कोई भी मंदिर में जाओ, कोई भी देवी के चेहरे पे कोई ऐसे कोई चिन्ह होता है, ऐसे कोई गंभीरता से नहीं देख रही होती, या कोई उदास नहीं होती, है ना। मंदिर में कितने भक्त आते हैं रोज, कोई कंप्लेन करते हैं, कोई कुछ मांगते हैं, वो थकती थोड़ी है, क्या थकती है वो देवी, नहीं थकती ना। तो हम भी वही चैतन्य देवियां हैं, लेकिन हम थक जाते हैं। उस दिन बाबा की 12th की मुरली में था एक वाक्य कि मेरा हर संकल्प और समय अभी विश्व के प्रति है। तो अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरा हर समय और संकल्प विश्व के प्रति है। हम तो हमारा समय फिक्स रखते, ये समय पर मिलेंगे, ये समय हमारा रेस्ट का है, ये समय नहीं मिल सकते। मम्मा बाबा को देखेंगे, मम्मा बाबा का कोई समय टाइम ऐसे कुछ फिक्स नहीं था, बच्चों को पूरी छूट थी, कभी भी आके मिल सकते, है ना। तो देखो समय का भी दान दिया, तो उसी तरह से उस देवी के चेहरे पर वो संतुष्टता रहती है। फिर उनके हाथ में, एक हाथ में क्या होता है, शस्त्र होते हैं ना बहुत सारे, तलवार, तो ज्ञान की तलवार, जिसने ज्ञान की तलवार को हाथ में रखा है, तो ज्ञान हमेशा बुद्धि में धारण रहे। एक हाथ में होता है त्रिशूल, त्रिशूल किसका प्रतीक है, दुर्गुणों को खत्म कर सद्गुणों से उस पे प्राप्ति की, तो त्रिशूल। उसी तरह से कमल, एक हाथ में कमल है, कमल किसका प्रतीक है, न्यारे प्यारे पवित्रता का प्रतीक है, है ना। हम ब्राह्मण आत्माएं, हमारा फाउंडेशन ही इस ब्राह्मण जीवन का है पवित्रता। तो हर देवी को देखेंगे, हर मंदिर में देखेंगे हम, तो बहुत अच्छा लगता है हमको जाके। क्यों? क्योंकि वो देवी जो है वो संगम युग की जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उतनी उसने पवित्रता धारण की है यहाँ पे, इसीलिए उतना पवित्र वातावरण है उस मंदिर का, इसलिए उतना खिंचाव है उस मंदिर में। फिर देखेंगे तो बाण, एक हाथ में बाण है दुर्गा के, ज्ञान बाण है ना, बाबा कहता है ज्ञान बाण मारेंगी ये कुमारिया। फिर स्वदर्शन चक्र एक हाथ में, स्वदर्शन चक्र अर्थात जिस आत्मा को स्व की पहचान हो वो है स्वदर्शन चक्रधारी। तो स्वदर्शन, एक हाथ में है शंख, शंख ध्वनि, मीठे बोल बोलना है ना, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ना सहन शक्ति के बारे में, तो फल कैसा है वो मीठा है, तो उसी तरह से हमारे बोल भी बहुत मीठे होने चाहिए। बाबा हमेशा स्लोगन हमको बताते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ऐसे ना बोलो कि धुआं निकले हमारे मुंह से, कि सामने वाला एकदम ही नीचे गिर जाए हमारे बोल से, हमारे बोल दूसरों को उठाने के लिए हो, है ना। और गले में क्या होती है, माला, देवी के गले में माला होती है, वो किसका प्रतीक है, परमात्मा की स्मृति का प्रतीक है माला, और शेर पर उसकी सवारी है। जब भी हम इन देवियों के बारे में शास्त्र में देखते हैं, तो देखते हैं कि आसुर से लड़ती है ना शक्तियां, और कुछ कुछ शस्त्र धारण करती है, एक आसुर को मारती है, फिर कोई एक नया शस्त्र, फिर वो आसुर को मारती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ हम देवियां क्या करते हैं, शस्त्र कौन से हमारे, ज्ञान, ज्ञान के जो अलग अलग पॉइंट्स है हमारे, ज्ञान जो मुरली है, अव्यक्त मुरली है, साकार मुरली है। तो असुर क्या है, ये माया है, या तो हमारी कमजोरियां है, या तो सामने वाले व्यक्ति जो हमारे सामने परिस्थितियां लेके आते हैं, तो उनको हम ज्ञान से जीतते हैं, तो वो इसका यादगार है। जो युद्ध एक्चुअली यहाँ चल रही है वो उन्होंने शास्त्र में दिखा दिया, असुर और शक्तियों की लड़ाई। और हर देवी का हाथ कैसा होता है, ऐसा वरदानी हाथ, आशीर्वाद देने वाला। तो देवियां क्या है, देने वाली। अब हम संडे की 12th की मुरली जो याद करेंगे, उसमें बाबा ने सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क क्या दिया, महादानी अखंड दानी बनना है। तो किस किस चीज का दान करने के लिए कहा बाबा ने, वाचा द्वारा ज्ञान का दान करो, कर्म द्वारा गुणों का ध्यान करो, और मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो, संबंध संपर्क द्वारा खुशी का दान करो, है ना। और बाबा ने क्या कहा, अनुभव से आगे बढ़ाओ, अनुभव से लोगों को आगे बढ़ाओ, है ना। तो हम एक वीडियो देख रहे थे, एक ये पाकिस्तानी पेंटर है, कुछ टाइम पहले आया था ये वीडियो, इनको शादी नहीं करनी थी, लेकिन इनके माता पिता ने इनकी शादी करा दी। फिर ये जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ एक दिन, तो हस्बैंड सो गया ड्राइविंग करते करते, और एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो उसका जो हस्बैंड था वो तो कार से निकल गया, लेकिन इनको बहुत सारी चोट लग गई, हाथ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर, बहुत सारा पेट में ट्रॉमा ऐसा हुआ कि कि वो पूरी बेड पे ही हो गई, उसके पैर जिंदगी भर के लिए काम नहीं करेंगे, तो कितनी दुख की बात है। और उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया इस हालत में, तो उसको बहुत दुख होने लगा। फिर डॉक्टर आया एक दिन और उसको बोला, उसको पेंटर बनना था, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम अभी कभी भी पेंटिंग नहीं कर पाओगी, तो उसको बहुत बुरा लगा। फिर डॉक्टर दूसरे दिन आया, डॉक्टर ने कहा कि तुम जिंदगी भर अभी चल नहीं पाओगी। फिर डॉक्टर तीसरे दिन आया और कहा कि तुम अभी कभी माँ भी नहीं बन पाओगी, तो उसके लिए बहुत दुख की बात थी। फिर वो कितने महीने थी हॉस्पिटल में, फिर घर गई तो उसने अपनी माँ को पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो उसकी माँ ने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, दिस शैल ऑल्सो पास, ये जो परिस्थिति आई है ये भी चली जाएगी। और ये वाक्य उसकी जिंदगी बदल दी। फिर उसने पेंटिंग करना चालू किया, फिर वो बहुत फेमस हो गई। अब वो कहती है कि मैं चाहती तो मैं अपना एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलती और अपाहिजों की मदद करती, लेकिन मैंने क्या किया, मैं पब्लिक में आने लगी और अपना अनुभव सुनाने लगी, और मेरे अनुभव से लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। तो देखो अनुभव कितना काम करता है। उसकी वीडियो देख के लोग बहुत खुश होते हैं, जो ऐसे अपाहिज है, जो चल नहीं पा रहे, जिनके एक्सीडेंट हो गए हैं, तो अनुभव कैसी चीज है जो लोगों को आगे बढ़ाती है। तो उसी तरह से बाबा ने यहाँ पर भी कहा ना कि अनुभव से आगे बढ़ो, कर्मों द्वारा दान, और बाबा ने कहा वाचा द्वारा ज्ञान का दान। कुछ हफ्ते पहले हम अपने लौकिक घर में गए थे, हमारे मामा ने शरीर छोड़ा था। तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो घर में कैसा होता है, सब रो रहे होते, बहुत रो रहे थे सब, और डेड बॉडी को गुसूल करके लेके आया गया। तो वो जो मौलाना थे वो सब महिलाओं को बोल रहे थे, हाँ हाँ ठीक है रो रो, अभी माफी मांग लो, रो लो रो लो, अपना को हल्का करो। और हम तो बैठे थे जैसे बाबा कहता है कि बाबा की याद में बैठो, शांति का दान दो ऐसे। इतने में एक व्यक्ति अंदर आया, वो जो हमारे मामा के फ्रेंड होंगे, और वो हमारी नानी से हाथ मिला के एक जगह खड़ा हो गया, हाथ ऐसे रख के। इन्होंने कोई सफेद कपड़े भी नहीं पहने थे मौलाना जैसे, इन्होंने एक कैप पहनी थी, शर्ट पहन पहन के खड़े हो गए। और मुस्लिम्स में यासीन शरीफ पढ़ते हैं, जो बाय हार्ट नहीं होती बहुत लोगों को, लेकिन इस व्यक्ति को पूरी यासीन शरीफ बाय हार्ट थी, बहुत कम लोगों को होती है। और वो बोलने लगे, और जैसे जैसे वो बोलने लगे आहिस्ते आहिस्ते करके जितने लोग रो रहे थे वो सारी महिलाएं शांत हो गई, और एकदम शांत, रोना ही बंद हो गया सबका। और इतना वातावरण इतना शांत इतना काम हो गया कि हमको भी लगा कि जो हम नहीं कर पाए ये कर दिया। तो बात ये है कि हमारे कर्मों से दान है ना। उसने किसी को आके कहा नहीं, कह रहे मत रो मत रो, वो नहीं कहने लगा किसी को रो मत, उसने क्या किया, सिर्फ खड़ा और अपना ज्ञान उसने पढ़ा, और अपने कर्म उसकी स्थिति उसने पूरा दान कर दिया उस वक्त। तो उस तरह से दान करना, तो जो दुर्गा है वो आशीर्वाद, जो उसका हाथ है वो दान के लिए, दया। दूसरा है दया भाव। सबसे पहले दया किस पे करनी है, स्वयं पर दया पहले करनी है, कहते हैं सेल्फ कंपैशन, है ना। एरोप्लेन में जब जाते हैं तो एयर होस्टेस वो सब दिखाती है ना, ऑक्सीजन मास्क, अगर प्लेन डूबने वाला है तो ये करो ये करो, तो क्या बोलती है, पहले अपने को लगाओ मास्क, फिर बाजू वाले को लगाओ। तो दया पहले स्वयं पर, फिर दूसरों पर, है ना। तो इस तरह से ये हो गई दुर्गा माँ। तीसरी पावर आती है समाने की शक्ति। इसमें कौन सा एग्जाम्पल बताते है? सागर का बताते हैं कि बहुत सारा कचरा डालो तो सागर क्या करता है, एक तो समाने की शक्ति होती है सागर में, और लहरों द्वारा जो कचरा है वो बाहर फेंकता है ना, समा लेता है। सबसे ज्यादा कौन समाता है हम सब में, माँ है ना। माँ जो है वो सबसे ज्यादा समा लेती है, बच्चे चाहे कुछ भी करे, उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन माँ एक ऐसा संबंध है जो सब कुछ समा लेती है। तो यहाँ हम याद करेंगे जगदम्बा को, है ना, जगदम्बा माँ जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, वो है जगदम्बा। माँ में दूसरा क्या संस्कार होता है? स्नेह होता है और पालना का। माँ जो है उसमें पालना का संस्कार होता है, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा भी माँ है, है ना। बाबा ने भी हमारी माँ बन के पालना की, तो पालना का संस्कार माँ। इसलिए ये जो देविया है ये सब माँ है ना, पालना का संस्कार है इनमें, तो मदर। तो हम आज दादी जानकी के बारे में पढ़ रहे थे कुछ, हंसा बेन ने उनके बारे में बुक लिखी है, तो उसमें वो कहती है दादी में इतनी पालना की भावना है, इतने पालना के संस्कार है। जब दादी जी लंदन गए तो दादी ने बहुत बच्चों के घर घर में बाबा के रूम खुलवा दिए। मतलब दादी एक एक के घर में जाके देखती थी और वो शिक्षाएं देती थी। तो कुछ सालों बाद चंद्रमणि दादी जी जब वहां गए तो चंद्रमणि दादी ने कहा कि जानकी दादी ने तो लंदन में घर घर को स्वर्ग बना दिया है, है ना। तो दादी एक एक की इंडिविजुअल पालना करती थी, और पालना देना, जैसे कि वो कहती है कि अगर दादी को कोई गिफ्ट मिलता है तो दादी अपने पास नहीं रखती है। एक बार क्या हुआ था, दादी की बर्थडे थी और दादी जी हॉस्पिटल में आए थे, दादी जी को सबने बहुत सारे गिफ्ट दिए, दादी ने सारे गिफ्ट लिए, बहुत प्यार से सबसे गिफ्ट लिया। और फिर दादी जब वापस ज्ञान सरोवर गई कॉटेज में, तो दादी ने सारे फॉरेनर्स को बुलाया और सारे गिफ्ट दे दिए, कोई जमा करने वाली बात ही नहीं। वो कहती है कि दादी अपने गुणों से हमारी पालना करती है। दादी के लिए कपड़े भी खरीदते तो दादी को एक्स्ट्रा कपड़े नहीं चाहिए कबर्ड में, दादी देखती है, चेक करती है कि कितने रखे इन्होंने, एक चप्पल से ज्यादा दूसरी नहीं। दादी कहती है एक चप्पल के ऊपर दूसरी चप्पल पहनोगे क्या, एक चप्पल। तो दादी अपने गुणों से, ऐसी दादी जब पहले लंदन में गए थे तो खुद खाना बनाते थे, उसके बाद जो बहन आई वो किचन में जाती थी, फिर भी दादी थर्सडे तो जाती थी और भोग बनाती थी और अपने हाथों से सब बच्चों को गरम गरम हलवा खिलाती थी। तो माँ है ना, वो पालना के जो संस्कार, तो ये है माँ। जैसे हम वर्ड देखते ना मदर, MOTHER, मदर, तो मदर एम, मदर में एम से क्या होगा, मर्सी, मर्सी मतलब रहम, रहम की भावना होती है एक माँ में, है ना, वो माफ कर देती है ना, कुछ भी होता है तो भी क्षमा कर देती है, मर्सी। जैसे परमात्मा भी रहम का सागर है, कुरान की हर आयत चालू होती है अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल, सबसे ज्यादा मर्सीफुल अल्लाह है। और लिखा है ऐसे कि उसकी सबसे ज्यादा रहम ये है जब उसने मोहम्मद को इस सृष्टि पर भेजा, जब दुनिया में बहुत खराब था और बहुत सब कुछ बुराइयां थी, और उस वक्त को कहते हैं जहिलिया। तो हम सोच रहे थे ये जो लिखा है ये क्या है, हमको भी तो बाबा वही कहता है ना कि हम भी कौन है, मैसेंजर्स है, हम ही वो है जिसको बाबा ने भेजा है, और हम भी वही रहमदिल आत्माएं हैं। जैसे बाबा रहमदिल है वैसे हम भी मास्टर रहमदिल है। तो माँ एम मदर मर्सी, ओ से ये आउटस्टैंडिंग रिलेशन है, ये सब संबंधों से ऊंचा रिलेशन है, संबंध है। माँ जैसा संबंध इस दुनिया में ही नहीं है, है ना। बड़ी दादी जी को देखेंगे उनमें भी वो माँ की जो पालना, माँ के जो संस्कार थे, सब ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करते। अगर कुछ गलती भी हो जाती थी तो दादी जो, जैसे सजा नहीं कहेंगे उसको, लेकिन दादी जो शिक्षा देती थी वो कैसे होती थी, दादी के पास जाओ तो दादी कहते थे बाबा के रूम में जाओ चार घंटा योग करो, ये दादी की शिक्षाएं होती जिसमें कल्याण हमारा ही है, है ना। टी टॉलरेंस जो हमने कहा, सहन शक्ति। एच फॉर हम्बल, नम्रचित, माँ बहुत नम्रचित होती है ना, बहुत नरम दिल होता है उसका। और ई एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी है उसमें। कुछ दिन पहले ये दुर्गा के जैसे आठ हाथ होते हैं ना, तो आज की जो महिला है वो भी दुर्गा जैसी है। कहते उसके भी इतने सारे हाथ हैं। कैसे? तो उसने चित्र में दिखाया था कि उसने एक बच्चे को हाथ में लिया है, एक बॉटल से दूध पिला रही है, एक हाथ यहाँ से निकल रहा है जिससे कपड़े सुखा रही है, एक हाथ निकल रहा है जिससे वो इस्त्री कर रही है, एक हाथ निकला है जिससे फोन पे बात कर रही है, एक हाथ निकल रहा है जिससे खाना बना रही है, एक हाथ निकला जिससे लैपटॉप ऑपरेट कर रही है, एक हाथ निकला जिससे झाड़ू पोता कर रही है। ऐसे उसके 8 हाथ दिखाए, मल्टीटास्किंग करती है। तो बहुत एनर्जी है। अगर हम कोई देवी के मंदिर में भी जाते हैं, है ना, देवी ऐसी ढीली ढाली तो नहीं कभी रहती, कभी दिखती ऐसी उदास जैसी नहीं, एकदम ऐसी ऐसी रहती, उसकी आंखें का चेहरा कभी भी नहीं देखते हम कोई देवी ऐसी मुरझाई हुई या नींद में या आलस्य अलबेलापन, कोई भी देवी में ऐसा नहीं रहता। और आर से रूहानियत, तो रूहानियत हर देवी के चेहरे पर वो रूहानियत है। तो आज हम ब्राह्मण आत्माएं, वो जगदम्बा, वो दुर्गा जिसके चेहरे पर वो रूहानियत हो। कोई भी मंदिर में जाता है तो उसके मन में कोई विकारी संकल्प नहीं आते ना मंदिर में जाने के बाद, क्योंकि वो रूहानियत है उसमें, उस देवी में जो हम सबको फील होता है। तो आज हम में भी वो रूहानियत हो, हमारे चलने का ढंग, हमारे पहनने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, हम जिस व्यवहार से लोगों में आते हैं, उन सब चीजों में रूहानियत। तो ये है जगदम्बा। नेक्स्ट शक्ति की हम बात करेंगे तो समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। अब जिस पावर टू पैकअप में क्या करते हैं, कहते हैं कि कोई भी पास्ट की बोझ वाली चीजें अपने साथ लेके नहीं जानी, एकदम हल्का जाना है यहाँ से, है ना। जो हल्की आत्माएं हैं, जो कोई बंधन में नहीं है, तो जैसे हमने पहले कहा जिसमें समाने की शक्ति है, जिसमें पालना करने की शक्ति है, पालना समाना वही कर सकता है जिसमें स्वीकार करने की शक्ति होती है, जो स्वीकार कर सकता है, जो एक्सेप्ट कर सकता है लोगों को, उसी के मन में ये पास्ट की बोझ नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस इसमें आती है। संतोषी माँ, संतोषी माँ के हाथ में क्या दिखाया है, प्याला, एक प्याला है ना गोल्डन, और उसमें क्या है, चावल, चावल के दाने हैं। तो उसका अर्थ क्या है कि जिस आत्मा ने संगम युग पर हर आत्मा को स्वीकार किया है, वो एक एक चावल का दाना एक एक आत्मा है, और जिस आत्मा ने एक एक आत्मा को स्वीकार किया है प्यार से, वो है संतोषी माँ। तो हम भी इस ब्राह्मण जीवन में वो संतोषी माँ है जिसने बहुत प्यार से सबको स्वीकार किया, चाहे किसी में कोई बुरे संस्कार है, अच्छे संस्कार है, कोई कमजोरियां है, लेकिन फिर भी हमने उनको स्वीकार किया है। स्वीकार करेंगे तभी तो संतुष्ट रहेंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो खुशी नहीं रहेंगे, है ना। तो वो है संतोषी माँ। तो ऐसे जैसे ही हम देखेंगे अभी ये संतोषी माँ, इसको यूज कैसे करना है ना। तो जब हम कर्म क्षेत्र पे जाते हैं तो हमको लगता है ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन स्वीकार करना कि उनकी कैपेसिटी उतनी है, है ना। जैसे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे अंडर इतने डॉक्टर्स काम करते हैं, तो अगर हम सोचेंगे ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने, इन्होंने ये ठीक से नहीं किया, लेकिन वो अगर मुझे खुश रहना है, अगर मुझे संतुष्ट रहना है, तो मुझे उनको समझाना तो है, लेकिन मुझे ये समझना जरूरी है कि वो अपनी कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, वो अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, उनकी बुद्धि उतनी है। अगर वो चीज मुझे बार बार डिस्टर्ब करेगी तो मैं कहां से फिर संतोषी माँ, है ना। तो ये जो शिकायत है, ये जो हमारी कंप्लेंट्स है, ये सब खत्म, तो वो है संतोषी माँ, है ना। जैसे कि बात, बहुत सारे लोग किसी भी आत्मा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसको क्यों रिएक्ट करना है। जैसे हम इसमें एग्जांपल सोच रहे थे कि हमको संतुष्ट ही रहना है ना, हम डिस्टर्ब कब होते हैं, जब सुनते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, ये भी चीज हमको डिस्टर्ब करती है, और फिर भी हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तो हम सोच रहे थे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, देखो लोग कितनी बात करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ दूं, है ना। तो हम भी वैसे रहे, कि संतुष्ट चाहे कोई कैसा भी हो, हर ब्राह्मण आत्मा यहाँ पर एक पेपर बन के आती है हमारे सामने, लेकिन कोई कैसा भी हो अच्छा ही है सब, है ना। यहाँ पे हम एक स्लोगन याद करते कि सब अच्छे हैं और सब अपने हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना है, सब अच्छे हैं और सब अपने हैं। तो समेटने की शक्ति, दूसरी शक्ति है परखने की शक्ति। तो उसमें किसका एग्जाम्पल दिया है, जौरी, परखने की शक्ति है ना, हीरा कौन सा असली हीरा है कौन सा नकली हीरा है। तो यहाँ पर हम याद करते सरस्वती देवी को, सरस्वती ज्ञान की देवी। तो हम ब्राह्मण आत्मा कैसे परखते लोगों को, अपने ज्ञान से। बाबा ने कहा है ना, पात्र देख के ज्ञान दो। तो ज्ञान, तो ज्ञान जिसकी बुद्धि में ज्ञान है वो है सरस्वती। तो वो उसके पास है ये परखने की शक्ति, है ना। और फिर उसी के साथ दूसरी शक्ति है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करना कि मेरे लिए क्या राइट है, मेरे लिए क्या रॉन्ग है, है ना। वो डिसीशन लेना कि कौन सी चीज राइट है कौन सी चीज रॉन्ग है, कौन सी ऐसी चीज है मुझ में जो मुझे खत्म करनी है, है ना। ये विकार है मुझ में, इसको मुझे कैसे भी खत्म करना है। तो पहले तो मैं परखूंगी कि ये मेरे में है, फिर मैं उसको खत्म करूंगी। तो खत्म, विनाश, तो कौन सी देवी याद आ रही है, काली, है ना। तो बाबा क्या कहता है, अपने ही विकारों पर काली बनो। कुमारियों से मुलाकात, एक बार बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में शीतला देवी बनो और अपने ही कमी कमजोरियों पर, अपने ही विकारों पर काली बनो। तो काली को कैसे दिखा दे, एकदम गुस्से वाली और खून टपक रहा है उसके मुंह से और सारे चेहरे सब लगे हुए उसको, है ना। तो ये क्या है, काली, ये हमारा यादगार है कि हमको हमारे कमजोरियों को ऐसे ही ढीला नहीं छोड़ देना है। हमारे कोई विकार है या कोई छोटी छोटी कमजोरियां है, उसको भी परखना है कि ये मुझ में है, जज करना है ये मुझ में है, अब मुझे इसको खत्म करना है। जैसे छोटी सी आदत, भोजन के टाइम पे बात करने की आदत, या भोजन के टाइम पे फोन पे कुछ कुछ करते बैठते हम, है ना, ये तो श्रीमत है नहीं। एक बार हमारी बात बताते हैं, हमने एक बार भोजन पे क्लास करवाई, बहुत अच्छी सी क्लास करा दी। उसके बाद हम एक दिन भोजन पे बैठे डाइनिंग हॉल में और एक डॉक्टर आके हमारे पास बैठी। अब वो पूरे दिन से अभी आके हमारे पास बैठी थी, तो मैं उनसे बात करने लगी, तो वो मुझे कहती है कि भोजन पे तुमने ही क्लास कराई थी ना। मैं बोला हाँ। है ना। तो देखो, पता चलता है कि हमारी ये कमजोरी है, क्लास तो हमने करवा दी लेकिन हम तो बात करने लग गए उससे भोजन पे, हमको लगा अभी मिली है पूरे दिन से, अभी पूछ लो इसको पेशेंट के बारे में। तो अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को परखना, जज करना कि ये है मुझ में, इसको खत्म करना है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे बाबा से दूर लेके जा रही है, उस चीज पे काली बन जाना। कौन सी ऐसी चीज है मुझे पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है, वहां काली बन जाना, है ना। वहां पे ढीला नहीं बनना है, वहां पे शीतला नहीं बनना है। तो वहां पे माँ वाला संस्कार नहीं कि माफ कर दो, चलो अपने आप को, दया करो अपने आप पर, नहीं, वहां काली बनना है। तो ये हुआ निर्णय करने की शक्ति। उसके बाद है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सामना करना। तो इसमें हम सब देवियों को ले लेंगे। सब देवियां कैसे आसुरों का संहार करती थी, है ना, हिम्मत से, अचल अडोल स्थिति से, चाहे बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, हिलाने वाली हो, लेकिन मैं आत्मा, मैं वो देवी, मैं वो शक्ति अंदर से पूरी तरह से अचल अडोल। तो देखेंगे तो सब देवियों में क्या है, है ना, ज्ञान का बल है, परमात्मा की याद है, श्रीमत है, वो बल है, ये जो शस्त्र है वो ज्ञान के एक एक पॉइंट्स है, पवित्रता का बल है, है ना। तो ये सारी चीजों से हम सामने की चीज को सामना करते, फेस करते। उसी तरह से ड्रामा की पॉइंट्स, उस दिन बाबा ने एक स्लोगन कहा था कि बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित होके देखो और निश्चिंत रहो, बाबा ने कहा। तो ड्रामा के हर पॉइंट्स को देखते हुए निश्चिंत रहना, तो इससे हम सामना कर सकेंगे परिस्थितियों में। तो ये है सामना करने की। और लास्ट पावर है, लास्ट शक्ति है सहयोग की शक्ति, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं ना महादानी, वरदानी, अखंड दानी, तो सहयोग देना, इसमें कौन सी देवी याद आ रही है? शीतला देवी। शीतला देवी को कैसे दिखाते हैं? एक हाथ में उसके झाड़ू होती है और एक हाथ में पानी का पॉट होता है, प्याला होता है, और कहते हैं कि कोई बीमार होता है तब इस देवी के पास जाते हैं, जब किसी को बुखार होती है तो ये देवी बुखार को ठीक कर देती है। कहते हैं कि वो जो झाड़ू है उसके हाथ में, उससे वो बीमारियों को झटक देती है, और ये जो ठंडा पानी है उससे छलका के बीमारियों को दूर करती है, बुखार को दूर करती है। तो आज हम शीतला देवी, इस संसार में लोग सिर्फ फिजिकली पीड़ित नहीं है लेकिन मानसिक रूप से भी पीड़ित है ना लोग, इसलिए बाबा ने कहा कि मनसा द्वारा शक्ति का दान करो। तो हमारे सामने कितनी ऐसी ढेर आत्माएं हैं जो बहुत डिप्रेशन में है, जो बहुत पीड़ा में है, जो बहुत दर्द में है। हम यहाँ बैठे तो हमको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन दुनिया में बाहर जाएंगे तो इतना दुख है। एक हॉस्पिटल में ही आप लोग चक्कर लगा के देखना तब पता चलेगा। जैसे ये देवी बीमारियों के लिए है ना, कभी डायलिसिस यूनिट में जाना, कभी जनरल वार्ड में जाना, और देखना कि उनके रिलेटिव कितने परेशान रहते हैं, कितने दुख में रहते हैं, पैसा जमा करना होता है उनको डायलिसिस का, एक एक डायलिसिस का कितना खर्चा होता है, उसमें कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको, वो प्रिक होता है उनको हर ऑल्टरनेट डे, हर एक दिन छोड़ के डायलिसिस के लिए आते हैं, कभी उनका खून कम हो जाता है तो उनको खून चढ़ाना पड़ता है ना। इसी तरह से कैंसर के पेशेंट होते हैं, कोई बहुत गरीब पेशेंट होते हैं, कैसे कैसे माँ बाप पैसे जमा करते हैं आके, तो कितनी पीड़ा है। तो मैं वो शीतला देवी, तो मुझे इन सब की पीड़ाओं को दूर करना है, और दूसरा मनसा द्वारा दान करना। आज हम सब न्यूज में ये सुनते हैं ना, यहाँ पर फ्लड आया, यहाँ पर तूफान आया, यहाँ पे सुनामी आया, ये सुनकर उसको बार बार देखना नहीं बैठ के, अरे ऐसा हुआ, अच्छा अभी कितने गए। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सूक्ष्म रूप में वहां पहुंच के तुरंत सकाश देना। हम वहां पे फिजिकली नहीं पहुंच सकते लेकिन मन से तो हम सब जगह पहुंच सकते, और इससे बड़ा दान हम कुछ नहीं देंगे उन आत्माओं को, शांति और शक्ति का दान, कि जो आत्माएं ये चीज को अभी फेस कर रही है उनको शांति का दान, उनको शक्ति इस चीज को फेस करने के लिए। जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा इस पूरी चीज में, उन आत्माओं को शांति का दान, उनके परिवार वाले जो इतने रो रहे हैं उनको शांति का दान, उनको शक्ति का दान कि वो समाए इस चीज को, सहन करे इस चीज को, है ना। तो ये हमारा कार्य है, तो ये है शीतला देवी, ये है हमारा सहयोग उनके लिए। तो ये है सारी 8 शक्तियां। अब कल क्या था यहाँ पे, तो 9 दिन इन देवियों की पूजा होती है, ये शक्तियां हैं, और कल था गरबा डांस। तो बाबा क्या कहता है हमको हमेशा, संस्कार मिलन की रास करनी है, है ना। तो जब गरबा डांस करते हैं तो देखते हैं ना कि बराबर एकदम कोऑर्डिनेशन में वो नाचते हैं, एक डंडी यहाँ पर, एक डंडी वहां पर, अगर गलती से डंडी कहीं और पड़ गई तो हाथ पे लग जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम आपस में जब कर्म क्षेत्र में आते तो वो संस्कार मिलन की रास होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि दिन भर में टकराव नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा कहता है ना कि एक ने बोला दूसरे ने माना, हांजी का पाठ पक्का करना, बाबा कहता बालक सो मालिक, ये सारे पॉइंट्स जब हम कर्म क्षेत्र में जाते तो ये याद रखना। जब भी हम रूम से बाहर निकलते हैं ना सुबह सुबह अपने कर्म में जाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट में, एक बात अपने आप को कहकर निकलना कि आज मुझे किसी से भी टकराव नहीं करना है, क्योंकि अगर टकराव करेंगे तो स्थिति हमारी डाउन हो जाएंगी। तो हम मुझे किसी से भी टकराव नहीं करना है, तो वो है। और जैसे यहाँ पर गीत बजता है ना, डांस के टाइम पे गीत बजता है, तो ये गीत क्या है, ये है परमात्मा की याद में हम ये रास खेलेंगे, है ना। बाबा की याद में ये रास खेलेंगे तब ये रास बहुत अच्छे से होंगे, अगर बाबा की याद भूली तो रास ठीक से नहीं होंगे। फिर देवान में आएंगे, फिर एक दूसरे की कमजोरियां देखेंगे। तो ये सब ना देखते हुए परमात्मा की याद में। तो ये है रास। और आज जैसे दशहरा था, है ना, तो रावण को जलाते हैं इसमें। तो रावण क्या है? हमारे ही विकार है, हमारी ही कमजोरियां है। जैसे आज मॉर्निंग क्लास में कह रहे थे ना, सूप नहीं खा, तो उसने क्या किया, उसको अपने स्वरूप का बहुत अभिमान था। तो उस अभिमान के कारण उसने क्या किया, पहले वो लक्ष्मण पे अटैक करती है। तो लक्ष्मण अर्थात लक्ष्य से दूर करने वाला, तो जैसे कि माया आ जाती है। और फिर रावण, है ना, रावण को तो जला दिया, लेकिन रावण मतलब अपने ही विकार, अपने ही कमजोरियों को जलाना। और हम जब पुरुषार्थ करेंगे और इन शक्तियों को यूज करेंगे, अपने आप को वो देवी समझेंगे कि मैं ही दुर्गा, मैं ही जगदम्बा, मैं ही सरस्वती, मैं ही शीतला, मैं ही संतोषी माँ, मैं ही काली हूँ, है ना। तो जब हम इन स्मृतियों में रहेंगे तब जरूर हमारी विजय होगी। और एक और बात ध्यान में रखना कि सारी देवियां ही है ना, हम भी देवी, सामने वाला भी देवी। तो देवी देवी एक दूसरे को उस स्मृति से देखे, उस नजर से देखे। क्योंकि देवी देवी से झगड़ सकती है क्या? नहीं ना। तो ब्राह्मण आत्माएं भी जो हम संगम युग पर है, वो सब देवियां ही है। कोई दुर्गा है, कोई सरस्वती है, कोई लक्ष्मी है, तो हम सब वो देवियां हैं संगम युग पर। ठीक है। ओम शांति।